प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक यशाया का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि अश्शूर देश उन पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बनाएगा। अब भविष्यवाणी दूरस्थ भविष्य की ओर उन्मुख है और आज हम देखेंगे दूरस्थ दंड। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि प्रभु हम आपके पवित्र वचनों का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हम इससे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिसे आपने हर एक को जीवित रखा है और ऐसा अवसर दिया है ताकि हम आपके वचनों में से सुने, सीखें, समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं या बीमार अवस्था में हैं या तनाव में हैं। पिताजी, आप प्रत्येक की सहायता करें, उन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान करें ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए, आपको धन्य कहने पाए। आप उनके पापों को क्षमा करें, उन पर कृपा दृष्टि करें, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम देखेंगे दूरस्थ दंड। अब भविष्यद्वक्ता दूरस्थ भविष्य की चर्चा करता है, उस समय अर्थात प्रभु का दिन जो महाक्लेश से आरंभ होता है और प्रभु राज तक चलता है। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसके 28 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में लिखा है, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। मेरे मित्रों, यह भविष्यवाणी भावी प्रभु राज के बारे में है। उत्तरी राज्य एप्रेम के पतन का कारण उनका घमंड था, उन्होंने घमंड का ताज पहन रखा था। परंतु भविष्य में जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा तब उन पर महिमा का ताज होगा। आइए हम आगे पढ़ें यशाया 28 उसके 6 और 7 पद में, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं, याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। मेरे मित्रों, मुझे एक व्यापारी ने व्यापार के कुछ तौर तरीके बताए। वह शायद ही ऐसा दिन देखता हो जब बड़े बड़े लाभ का निवेश न किया जा रहा हो। उसने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया जो पाप में जी रहा था। वह अपनी पत्नी का विश्वास योग्य नहीं था और बहुत शराब पीता था। उसने हाल ही में कुछ ऐसे निवेश संबंधित बातें की जिनके कारण इस व्यक्ति ने उसे पैसा उधार देना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि जब मनुष्य शराब पीने लगता है और पाप करता है, तब वह व्यापार में अपनी बुद्धि खो देता है। उसने कहा, विश्वासी होने के कारण मुझे गलत समझा जाएगा, परंतु मैंने वर्षों यही देखा है कि यह सच है। मैंने कटु अनुभवों से यह सीखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उत्तरी राज्य में यही देख रहा है। शराब पीने के कारण वे भटक गए हैं, वे दर्शन पाकर भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में ऐसे लोगों को देखते हैं जो शराब के कारण अपने परिवारों को तोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, व्यापार उनके डूबते जा रहे हैं, और इसी बात को हमें यहाँ पर बताया गया है। यशाया 28 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। इन पदों के कारण पूर्व समय के टीकाकारों ने यशाया को सार्वजनिक स्थानों का भविष्यद्वक्ता कहा है। शिक्षा देना धीरज का काम है जो धीरे धीरे परंतु लगातार चलता है। आत्मिक सत्य भी इसी प्रकार सिखाया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक आलसी और निष्क्रिय प्राणी को एक ही बार में आत्मिक सत्य का ज्ञान प्रदान नहीं करता है। किसी भी युग में मनुष्य ईश्वर त्याग करे तो आत्मिक सत्य उसको समझना कठिन हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि उसको समझाना भी कठिन हो जाता है। आज अनेक विश्वासी अपने मसीही जीवन से संतुष्ट नहीं है। स्पष्ट बात तो यह है कि वे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं। वे किसी दो सप्ताह के अद्भुत कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं कि उससे समस्याओं का समाधान होगा। वे अपने वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना सीखेंगे, अपनी सास के साथ संबंध सुधारना सीखेंगे, अपने बच्चों की अगुवाई करना सीखेंगे और आदर्श कर्मी बनना सीखेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि न तो कोई छोटा अध्ययन, न ही कोई महान भावनात्मक अनुभव आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा या आपको सिखा पाएगा। मसीही जीवन में कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, अर्थात कोई भी शॉर्टकट नहीं है। विश्वासी के विकास का एक ही मार्ग है और वह एक ऐसा मार्ग है जो साधारण है कि मैं बताते हुए भी डरता हूं। इसराइल के पास परमेश्वर का वचन था, एक एक आदेश, एक एक पंक्ति। परमेश्वर के वचन का दैनिक अभ्यास आवश्यक है। तब क्या हुआ? इसराइल ने उसका पालन नहीं किया, वे पिछड़ गए। आज मसीही विश्वासी में भी अनेकों का यही हाल है। ऐसा नहीं है कि वे किसी से दुर्बल हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, समय नहीं देते, वचन पर मन लगाना नहीं चाहते। मुझे बोध है कि यह उत्साह का काम नहीं है, परंतु एक एक पंक्ति, एक एक आदेश ही के द्वारा आप अपने मसीही जीवन में विकास कर पाएंगे। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको उसी मार्ग से होकर के जाना है, अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा से आप विकास कर पाएंगे। यहूदा की चेतावनी के बारे हम देखते हैं। यशाया के पुस्तक 28 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों यहोवा का वचन सुनो। उत्तरी राज्य पर आने वाला दंड दक्षिणी राज्य यहूदा के लिए चेतावनी हो। एप्रेम यरूशलेम से कहता है और यरूशलेम हमसे कहता है और परमेश्वर का वचन सबसे कहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक परमेश्वर ने लिखी है बीते हुए कल नहीं, आने वाले कल के लिए। और सच तो यह है कि यह पुस्तक कल के समाचार पत्र से भी आगे है। इसलिए मुझे और आपको इसके वचन पर विश्वास करना है। आगे हम देखते हैं यशाया 28 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। यह कैसी वाचा और कैसी प्रतिज्ञा है? दानियल ने इसराइल और ख्रिस्त विरोधी के मध्य भविष्य में होने वाली वाचा का उल्लेख किया है। ख्रिस्त विरोधी पाप का मनुष्य आने वाला अभक्त शासक होगा। वह निरंकुश शासक है, समुद्र से निकाला पशु, भूमि से उत्पन्न पशु और शैतान का अवतार होगा। ये सारी बातें हम दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 पद में पाते हैं। यशाया 28 के 16 पद में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। आज मनुष्यों के जीवन का झूठ और धोखा जो महाक्लेश तक रहेगा, इसका क्या उत्तर है? परमेश्वर ने इसका उत्तर हमें दे दिया है। यह एक आधार है, एक परखा हुआ पत्थर है, मूल्यवान कोने का पत्थर है, एक निश्चित नींव है, जो उसमें विश्वास करता है उसे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, वह उसमें निश्चिंत रहेगा। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 6-8 पद में उसके बारे में लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। मेरे मित्रों, शमौन पत्रस अति स्पष्ट कहता है कि वह प्रभु यीशु है जिस पर आप विश्वास रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। यशाया की पुस्तक 28 अध्याय के 17 पद में लिखा है, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। मेरे मित्रों, उन पर दंड आकस्मिक नहीं होगा। मेरे विचार में आज ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी दंड आकस्मिक ही आता है, परंतु धीरे धीरे आने वाला दंड आकस्मिक दंड से बुरा होता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि आपको समझ में ही नहीं आती है। यशाया 28 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्या आपने ऐसी चादर ओढ़ी है जो यदि सिर ढांके तो पांव खुल जाए और पांव ढांके तो सिर खुल जाए? ऐसा पलंग जिसमें आपके पांव बाहर निकलते हों वह आरामदायक नहीं होता है, क्योंकि आपको टेढ़ा होकर के सोना पड़ता है या सिर ऊपर रखकर सोना पड़ता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल से कहता है कि वह उन्हें ऐसा बिस्तर देगा जिसमें बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। तदुपरांत परमेश्वर दंड देगा। परमेश्वर ने 100 वर्ष बाद यहूदा को दंड दिया, परंतु उसे दंड अवश्य दिया। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर की प्रजा पर अंतिम दंड। अध्याय का यह अंतिम भाग गेहूं और खरपतवार के दृष्टांत स्वरूप है। वह अलग अलग प्रकार के अन्न की चर्चा करता है। कुछ दाने कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। उनके दावने की विधि भी अलग अलग होती है। हम पढ़ते हैं यशाया 28 अध्याय उसके 25 पद में, क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता। ध्यान दीजिए, सौंफ, जीरा, गेहूं, जौ और चावल। तब आगे लिखा है यशाया 28 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, दावने की गाड़ी से तो सौंप दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंप छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। मेरे मित्रों, किसान को कोमल अन्न की कटनी में सावधान रहना होता है, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग होते हैं। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का दंड देना भी ऐसा ही है। दंड को यहां कटनी कहा गया है। मनुष्य हो या राष्ट्र, वे स्वयं ही अपना दंड निर्धारित करते हैं। यदि आपका मन कठोर है और आप परमेश्वर का विरोध करते हैं तो आप कठोर अन्न हैं और आपका दंड भी कठोर होगा। एक पुरुष कहने लगा, जब तक उसने अपने आप को संभाला, अपनी पत्नी और अपने दो बच्चे खो दिए। परमेश्वर ने मुझे 3 बार दंड दिया क्योंकि मैं एक कठोर मन का पापी था। परमेश्वर आपकी दावनी करता है और यदि आप कठोर हैं तो वह आपके साथ कठोरता का व्यवहार करता है, कठोर दंड देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 30 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लें और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और तब पद 41 में वह कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। यह कैसी भयानक बात है। मेरे प्रियो, हम स्वयं ही अपना दंड निर्धारित करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञा माने तो वह हमें गेहूं के साथ रखेगा और दंड के प्रकोप से बचाएगा, क्योंकि यह तो निश्चय ही है कि हम जो बोते हैं उसे ही हम काटेंगे। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 28 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 29 से, जिसका विषय है यरूशलेम निकट भविष्य से प्रभु राज तक की भविष्यवाणी। इस अध्याय की भविष्यवाणियां यरूशलेम तक ही सीमित हैं, परंतु सेनहरीब के आक्रमण से चलकर अन्य जातियों द्वारा यरूशलेम के रौंदने तक की है। जब जकर्याह 14 अध्याय उसके 1-7 पद के अनुसार अंतिम बैरी उनका सर्वनाश करेगा तथा प्रभु यीशु के द्वारा जैतून के पर्वत पर पदार्पण तक जाती है, तो इस अध्याय की तुलना मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 7 पद से 24 अध्याय उसके 2 पद और लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 से 35 पद, 21 अध्याय उसके 20 से 24 पद में प्रभु यीशु के वचनों के साथ करना लाभदायक है। यरूशलेम इतिहास और उसके भविष्यवाणी को हम देखते हैं। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हाय अरियेल अरियेल हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा, वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। ध्यान दीजिए, यह जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि यरूशलेम का पदनाम अरियेल है। अरियेल का अर्थ है शेर के समान। दूसरा शामुएल की पुस्तक 23 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, यहोयाद का पुत्र बनायाह था, जो कबसेल वासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे दो मुआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गढ़े में उतर के एक सिंह को मार डाला। मेरे प्रियो, शेर के समान पुरुष अरियेल पुरुष होता है। इसका अर्थ परमेश्वर का सिंह भी हो सकता है। यहेजकेल की पुस्तक 43 अध्याय उसके 16 पद में इसी शब्द का अनुवाद वेदी किया गया है। अतः परिस्थिति के अनुसार इस शब्द का अर्थ परमेश्वर की वेदी भी हो सकता है। यरूशलेम के लिए दोनों अर्थ उपयुक्त हैं। इसकी पहचान के लिए यहां कहा गया है जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। दाऊद के परिवार का कुल चिन्ह शेर था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में हमारे प्रभु यीशु को यहूदा का सिंह कहा गया है। यरूशलेम वह स्थान था जहां परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, जिसमें वेदी भी थी। यरूशलेम के संबंध में यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी यशायाह के समय से पूरी होने लगी थी और आज तक पूरी हो रही है। यदि आप यरूशलेम की सड़कों पर चलेंगे तो आप इस भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखेंगे और यह पूरी होती जाएगी। तो आइए हम पढ़ें यशाया 29 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तो भी मैं तो अरियेल को संकट में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियेल सा ठहरेगा। यह यरूशलेम का दंड है। आगे हम पढ़ेंगे यशाया 29 अध्याय उसके 3 से 5 पद में, मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल में से गुनगुनाकर बोलेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। मेरे मित्रों, यह भविष्यवाणी नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के विनाश से पूर्व की गई है। वह उस समय का आरंभ था जिसे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, अन्य जातियों का समय कहा है, यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाएगा। उसकी सड़कों पर अन्य जातियों ने विचरण किया है और आज भी कर रही है। यरूशलेम अन्य किसी भी नगर की तुलना में रौंदा गया और हराया गया है। मेरे पास इस नगर के इतिहास में 27 घेरावों की जानकारी है। वह जब जब परास्त किया गया उसे ध्वंस किया गया है। यही कारण है कि लोगों का कहना अति उचित है, यरूशलेम में यीशु के चरण चिन्हों पर चलकर दिखाओ। असंभव, क्योंकि आज का यरूशलेम बहुत ऊंचा उठ गया है। यीशु के समय उसकी ऊंचाई इतनी नहीं थी। उदाहरण के रूप में देखें, आज बैतसैदा का कुंड आज के स्तर से 50 फुट नीचे था जब प्रभु यीशु वहां विचरण करता था। इसी प्रकार सुलेमान का मंदिर ओमर के मस्जिद से 100 फुट नीचे है। वह नगर अनेक बार नष्ट किया गया और हर बार उन्होंने उसे समतल बनाकर पुनः निर्माण किया। नहमिया ने ऐसा ही किया था। उसने मलबे में से यरूशलेम के शहरपनाह का पुनः निर्माण किया था। वहां पत्थरों की भी कमी नहीं है, अतः उनके पुनः निर्माण के लिए पत्थर बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे मित्रों, यरूशलेम और आसपास के क्षेत्र संसार के सबसे अधिक पथरीले प्रदेश हैं। यही कारण था कि बैरी के लिए यरूशलेम को जीतना आसान नहीं था। हम आगे पढ़ते हैं यशाया 29 अध्याय उसके 6-8 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा, और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरोध लड़ेंगे और उसको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे, और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है परंतु जाकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है परंतु जाकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर जाता है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेगी। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं यरूशलेम का अंतिम घेराव जो सबसे भयानक होगा। जकरयाह की पुस्तक 14 अध्याय में हम इसे पाते हैं, परंतु परमेश्वर हस्तक्षेप करके अपनी प्रजा को विलोप होने से बचा लेगा। परमेश्वर के सब बैरी जो वहां राज करना चाहते हैं निराश हो जाएंगे और परमेश्वर उनका दमन करेगा। वह वहां अपना राज्य स्थापित करेगा, उसने कहा है तो वह अवश्य ही करेगा। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और किसी भी परिस्थिति में उसके पास आने के लिए तैयार रहते हैं तो निश्चय ही वह हमारी सुरक्षा करता है, जिस प्रकार उसने यरूशलेम के लिए किया, क्योंकि उसने उनके लिए कहा कि वह उनकी रक्षा करेगा। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही इस वचन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।